आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय प्राकृतिक परिघटनाएं। ये कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का 15वां अध्याय है। बच्चों, आपने अपने आसपास कई सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की होंगी, नोटिस की होंगी, महसूस की होंगी कि ये क्यों होती हैं, और जो भी ये घटनाएं आपके प्रकृति में होती हैं प्राकृतिक रूप से, इन्हें कोई इंसान नहीं करवा रहा, कोई व्यक्ति नहीं करवा रहा, इसे प्रकृति करवा रही है। तो इन घटनाओं को प्राकृतिक परिघटनाएँ कहते हैं, जैसे कि बारिश का होना या पवन का एक जगह से दूसरी जगह के पर बहना। तो ये सभी जो घटनाएं हो रही थी, आपने देखा होगा जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या होता है कि धूल मिट्टी भी साथ में उड़ने लगती है, पत्तियां उड़ने लगती हैं। कभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है तो आंधी तूफान में हमारे दरवाजे और खिड़कियां भी आपस में टकराने लगती हैं। तो ये जो घटनाएँ हैं, इन्हीं के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि बिजली कैसे चमकती है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बिजली का निर्माण हो पाता है हमारे प्रकृति में। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि हवा एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती है, क्या क्या कारण है जो हवा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करते हैं। तो चलो बच्चों, इस अध्याय का पहला विषय पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला विषय है कि वायु दाब डालती है। इसका मतलब क्या है कि जो वायु आपके अराउंड प्रेजेंट है, आपके आसपास जो वायु प्रेजेंट है, वो क्या करती है, वो प्रेशर लगाती है, वो दाब डालती है। दाब का मतलब बच्चों क्या होता है, आप मान लो किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करो तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, आप मजबूती से उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो तो आप वहाँ पर फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से उसमें प्रेशर लग रहा है। आप जब भी कहीं पर फोर्स लगाते हो तो वहाँ पर प्रेशर ज़रूर लगता है, उसी को कहते हैं दाब डालना। मान लो आपके हाथ में कोई स्पंज हो, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको हाथ से आप दबा रहे हो उसको, तो वहाँ पर आप फोर्स लगा करके उसको दबा रहे होते हो। तो जब आप दबाते हो तो वहाँ पर वो दब रही है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो उसी से प्रेशर उसमें लगती है और उसी को कहते हैं दाब डालना या प्रेशर लगाना। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक रूल समझा देती हूँ, आपको ये हमेशा याद रखना है, ये हर जगह अप्लाई होता है, आपको ये जीवन भर याद रखना है कि कभी भी जो प्रेशर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ें आती हैं हमेशा। जहाँ पर भी प्रेशर यानी कि दाब जहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ से चीज़ें ऐसी जगह आना चाहती हैं जहाँ पर प्रेशर कम हो यानी कि दाब कम हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको एक गतिविधि करनी है, गतिविधि एक पेज नंबर 163 पर। आपको क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है, उसमें आधी गर्म पानी रख देनी है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में आपको उस बोतल को पूरा खाली कर देना है और फटाफट से तुरंत उसमें ढक्कन लगा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस बोतल के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पानी उस पर डाल देनी है। उसके बाद जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि आपकी जो बोतल है वो पिचकने लगती है। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हो, चित्र 15.1 पेज नंबर 163 पे, यहाँ पे बोतल जो है ठंडा पानी डालने के बाद में पिचक करके अजीब सी दिखने लग गई है। तो अब आप सोच रहे होगे कि वो पिचक क्यों गई आपकी बोतल। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आपने बोतल को बंद कर दिया उसका ढक्कन, तो बोतल के अंदर कुछ भाप के पार्टिकल्स रह गए थे, कुछ बूंदे रह गई थी भाप की। आपने भाप देखा होगा कैसे होता है, पानी का ही भाप होता है लेकिन वो धुआं धुआं सा आपको नजर आता है। तो थोड़ा थोड़ा भाप जो बोतल के अंदर में रह गया था, जैसे ही आपने उस पर ठंडा पानी डाला तो क्या हुआ, वो भाप की जो बूंदे थी वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो गई, वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गई। इससे क्या होता है, जो पानी की बूंदे होती है ना, उनकी डेंसिटी कम होती है और हमारी जो एयर होता है, हमारी जो वायु होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब कि घनत्व, हिंदी में घनत्व कहते हैं इसको। तो जो एयर होती है, जो हम सांस लेते हैं, बाहर की जो नॉर्मल वायु होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होती है, लेकिन जो भाप होता है, जो पानी होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसलिए क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब कि जो घनत्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे, घनत्व बढ़ाओगे, तो दाब भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, घनत्व किसकी ज़्यादा है, वायु की ज़्यादा है और पानी की कम है, इसलिए जो वायु होगा उसका दाब ज़्यादा होगा और पानी का दाब कम हो जाएगा। और मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था कि जो प्रेशर होती है वहाँ जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होती है, जहाँ पर ज़्यादा दाब होती है, हर एक चीज़ ज़्यादा दाब वाली जगह से कम दाब वाली जगह पर आने की कोशिश करती है। तो आपको पता है कि वायु के अंदर में दाब ज़्यादा हो गया है और बोतल के अंदर जो पानी है उसके अंदर दाब कम हो गया है, तो क्या होगा कि हवा जो होगी वो बोतल को दबाने की कोशिश करेगी, वो बोतल के अंदर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर तो वो जा नहीं सकती क्योंकि बोतल तो आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, इसलिए आपकी बोतल जो होती है वो पिचकने लग जाती है। उसको पिचकाता कौन है, जो उसके आसपास वायु मौजूद है ना, वही वो उस बोतल को पिचकाने लगती है और उसका शेप खराब हो जाता है बोतल का। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने हमेशा गुब्बारा फुला करके देखा होगा, जब आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर देते हो तो क्या होता है, गुब्बारा आपका फट जाता है। तो वो क्यों होता है, जब आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर देते हो जो तो आपने हवा जो गुब्बारे के अंदर डाल दी वो क्या करती है, वो हवा उस गुब्बारे पर प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है और उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, आपके गुब्बारे के अंदर में दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर दी है। तो क्या होता है, जो आपके उस गुब्बारे के आसपास बाहर की जो हवा है उसका दाब कम हो जाता है और इसीलिए जो गुब्बारे के अंदर की हवा है वो बाहर आना चाहती है, वो उस जगह पर आना चाहती है जहाँ पर दाब कम है। मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ ज़्यादा दाब वाली जगह से कम दाब वाली जगह पर आने की कोशिश करती है, इसीलिए गुब्बारे की अंदर की जो हवा होती है वो बाहर आना चाहती है। और आपने तो गुब्बारे का मुँह पकड़ लिया होता है, बंद कर दिया होता है, तो वो हवा बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए क्या होता है आपका गुब्बारा फट जाता है ताकि वो गुब्बारे के अंदर से बाहर की तरफ आ पाए, वो ज़्यादा दाब वाले एरिया से कम दाब वाले एरिया में आ पाए। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपकी पतंग तभी उड़ पाती है जब हवा चल रही हो, तो ऐसा भी क्यों होता है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ लेनी है बच्चों की, जो हवा होती है वो दाब लगाती है, वो प्रेशर लगाती है अपने आसपास की चीज़ों पर। तो जब हवा तेज़ होती है तो वो पतंग को ऊपर ले जाने लगती है, उस पर दाब लगाती है और उसको ऊपर की तरफ उड़ाने लगती है। इसी तरीके से झंडा भी लहराता है और पत्तियाँ और धूल आदि भी जो उड़ते हैं हवा में हमारे आसपास, वो इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उन पर हवा जो होती है वो दाब लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में अब आ गई होगी कि जो वायु होती है वो दाब लगाती है। उसके बाद बच्चों अब हमें आगे पढ़ना है, अगला विषय है वायु दाब पर वायु के वेग का प्रभाव। और इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, गतिविधि करनी है, गतिविधि दो, ये पेज नंबर आपके 164 पर है। तो आपको पहले विषय समझा देती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। तो जो वायु दाब होता है, जो आपकी एयर का प्रेशर होता है, उस पर उसकी स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है हमें ये पढ़ना है। तो कितनी तेज़ हवा चल रही है, उस हवा की जो तेज़ी है वो हमारे वायु के प्रेशर पर, वायु के दाब पर क्या प्रभाव डालती है, हमें ये समझना है। तो इस गतिविधि में आपको क्या करना है, आपको एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और उसमें आपको एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ करके एक बॉल बनाना है और आपको उस बोतल के मुंह पर उसको रख देना है। आपको बॉल ऐसी बनानी है कि वो आपके जो बोतल का ढक जो बोतल का मुंह है उससे थोड़े छोटे साइज़ की बॉल हो, ऐसा ना हो कि वो उसके भीतर ना जा पाए, उसके अंदर वो आसानी से जानी चाहिए, लेकिन आपको उस बॉल को उसके मुंह के पास ही रखना है, उसको अंदर खुद से नहीं डालना, अभी उसको मुंह के पास ही रखो। और उसके बाद मुंह के पास रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें हवा फूंकनी है, आपको उसमें हवा ब्लो करनी है। आप जब उसमें फूंक मारोगे तो आपको अपनी फूंक की मदद से उस कागज़ की गेंद को अंदर डालने की, अंदर ढकेलने की कोशिश करनी है। आपको अपने हाथ से नहीं डालना है, आपको उस बोतल को टेढ़ा करके उस बॉल को अंदर नहीं डालना है, आपको उस बॉल को ऐसे डालना है कि आप पहले बोतल को इस ऐसे तरीके से रखोगे कि आप उसमें फूंक मारो और वो बोतल के अंदर बॉल चली जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको बोतल को कैसे तरीके से रखना है और उस पर फूंक कैसे मारनी है, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 164 पर आपको एक पिक्चर देके भी दिखाया गया है, चित्र 15.2 में आपको बताया गया है कि आपको बोतल कैसे रखनी है और उसमें फूंक कैसे मारनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया गया है, ये बच्चा जब फूंक मार रहा है तो अपनी फूंक की मदद से इस बॉल को वो बोतल के अंदर ढकेलना चाहता है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, लेकिन आप ये नोटिस करोगे, आपको ये महसूस होगा कि आप उस बॉल को बोतल के अंदर फूंक मार के नहीं डाल पाते हो। उसके बाद आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब आप फूंक मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप फूंक मारने की वजह से अपनी जो हवा है उसको तेज़ी से अंदर की तरफ ढकेल रहे हो, मतलब आपने जो हवा की स्पीड है उसको बढ़ा दी, क्योंकि आप
फूंक मार रहे हो तो फूंक मारने की वजह से जो हवा होती है उसकी तेज़ी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो बॉल का प्रेशर है उसके पास जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाता है, और जो बोतल के अंदर वाला एरिया है, जो बोतल की सतह होती है, वहाँ की जो हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता है कि हवा जो होती है हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह पर आती है, ज़्यादा दाब वाली एरिया से कम दाब वाली एरिया के पास आने की कोशिश करती है। तो इसीलिए क्या होगा कि जितना तेज़ आप फूंक मारोगे उतना ही कम प्रेशर उस जगह का हो जाएगा, और उतना ही ज़्यादा प्रेशर कहाँ का हो जाएगा, बोतल के सतह वाले एरिया का। इसीलिए वहाँ से हवा ढकेलेगी बॉल को बोतल की बाहर की तरफ। आप तो उसे अंदर ढकेलना चाहते हो, लेकिन जो बोतल के अंदर की जो हवा है उसकी प्रेशर, उसकी दाब ज़्यादा है, और वो बोतल के अंदर से बॉल को बाहर की तरफ ढकेलना चाहती है, और इसीलिए आप बॉल को अंदर नहीं ढकेल पाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए याद करने वाली चीज़ क्या है और समझने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि हवा की तेज़ी अगर ज़्यादा हो तो उसका दाब कम हो जाता है। मतलब ये कि जब आप कोई भी हवा देखोगे अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत तेज़ी से चल रही है तो उसका दाब हमेशा कम होगा, और वो हवा जो तेज़ी से नहीं चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, उसकी प्रेशर ज़्यादा होती है, उसकी दाब ज़्यादा होती है। इसीलिए जब आप फूंक मार रहे थे तो आप उस हवा को तेज़ी से अंदर ढकेल रहे थे, उसकी वजह से उसका दाब कम हो गया, और जो बोतल के अंदर की हवा है उसका दाब ज़्यादा हो गया क्योंकि उसकी तेज़ी कम थी। तो क्या होगा कि जो हवा है वो ज़्यादा दाब वाले एरिया से कम दाब वाले एरिया की तरफ आना चाहेगी, और उसी दौरान जब वो कम दाब वाले एरिया के अंदर आना चाहती है उसी दौरान वो कागज़ की उस बॉल को बोतल के बाहर को ढकेलने लगती है, और आप उस बॉल को अंदर ढकेलने में असफल होते हो, ढकेल नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपको ये गतिविधि तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगली गतिविधि हमें करनी है गतिविधि 3। इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 गुब्बारे लेने हैं एक ही साइज़ के, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और उसको आपको फुला लेना है, एक ही साइज़ में आपको फुला लेना है, दोनों एक ही जैसे लगने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इन गुब्बारों को आपको बांध देना है, इनका मुंह एक रस्सी की मदद से, और उसके बाद इन दोनों गुब्बारों को आपको किसी लकड़ी पर लटका देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप लटका रहे होगे तो आपको हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन दोनों गुब्बारों के बीच में आपको कुछ दूरी रखनी है, लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी आप रखनी है इन दोनों गुब्बारों के बीच में, और फिर इनको आप लटका देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे लटकाना है तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, चित्र 15.3। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों गुब्बारों को लटकाया गया है, दोनों सेम साइज़ के हैं और इनके बीच में कुछ दूरी रखी गई है। इसी तरीके से आपको कुछ दूरी रख के इन्हें लटका देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच में जगह आपने छोड़ी है वहाँ पर में आपको फूंक मारना शुरू कर देना है, ज़ोर ज़ोर से आपको फूंक मारना शुरू कर देना है। उसके बाद जब आप ऑब्ज़र्व करोगे, आप ध्यान से नोटिस करोगे, तो आपको दिखेगा कि वो जो दोनों गुब्बारे आपने कुछ दूरी पर लगाए हुए हैं फूंक मारने की वजह से वो पास में आने लगते हैं। फिर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता है, वो दोनों गुब्बारे पास में क्यों आने लगते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही आपने फूंक मारना शुरू किया तो वहाँ पर आपने उस हवा की तेज़ी को और बढ़ा दिया। आपने क्या किया, फूंक मारने की वजह से जो आपकी हवा आप निकाल रहे हो अपने मुंह से उसकी तेज़ी आपने बहुत ज़्यादा कर दी, इसकी वजह से वहाँ का जो हवा आप छोड़ रहे हो उसकी दाब कम होगी, उसका प्रेशर कम होगा, और जो बलून के आसपास की जो हवा है, बलून के पास वाली जो हवा है उसकी प्रेशर ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि हवा जो है वो ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से, ज़्यादा दाब वाले एरिया से कम दाब वाले एरिया के पास आने की कोशिश करेगी। जहाँ पर आप फूंक मार रहे हो, दोनों गुब्बारों के बीच की जो जगह है वहाँ पर आप फूंक मार रहे हो, तो वहाँ पर हवा की तेज़ी ज़्यादा हो गई और दाब हवा का कम हो गया, और जो गुब्बारे की दूसरी साइड वाली जो हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, उसका दाब ज़्यादा है, इसलिए वो हवा जो है ज़्यादा दाब वाले एरिया से कम दाब वाले एरिया के पास आने की कोशिश करेगी। और इसी करने के दौरान, मतलब जो हवा जिसकी ज़्यादा दाब है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया के पास में जब वो आ रही होती है तो हवा वो साथ में बलून को भी पास में लाने की कोशिश करती है, इसीलिए आपको गुब्बारे पास में आते हुए नज़र आते हैं। आपको तो मालूम है जब भी हवा चलती है तो हवा के चलने की वजह से चीज़ें भी चलने लगती हैं। जैसे जो पत्ती होती है वो अगर पड़ी हुई है तो वो अपने आप तो चलेगी नहीं, लेकिन हवा जब चलने लगती है तो वो उसको अपने साथ में ढकेलती है, इसीलिए आपको पत्ती उड़ती हुई नज़र आती है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, जो बलून के दूसरे साइड वाला हवा है उसका दाब कम है, उसका प्रेशर कम है, और वो हवा जो है वो कम प्रेशर वाले एरिया में आना चाहती है, कम दाब वाले एरिया में आना चाहती है, इसीलिए जब वो मूव करती है, जब वो चलती है तो साथ में वो बलून को भी ढकेल देती है, और दोनों बलून आपको पास में नज़र आपको नज़र आता है कि वो पास में आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये दो गतिविधियाँ करके क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर आप हवा का वेग बढ़ा दोगे, अगर आप हवा की स्पीड बढ़ा दोगे, तेज़ी बढ़ा दोगे, तो उस हवा की दाब कम हो जाएगी, उसकी प्रेशर जो होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद बच्चों अब हमें पढ़ना है कि जो हवा होती है वो चलती क्यों है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहती क्यों है। तो यहाँ पर आपको अगला जो विषय है वो पढ़ना है, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना। आपको पता है कि जब सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो जो भूमध्य की रेखा होती है, जो इक्वेटर वाला एरिया होता है जहाँ पर हमारा भारत मौजूद है और इसी तरीके के जो देश मौजूद हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। तो इक्वेटर वाला एरिया कौन सा होता है, भूमध्य रेखा कौन सी होती है? देखो अब आप कोई स्फेयर, कोई गेंद को इमेजिन करो, सोचो उसमें आप अगर गेंद को बीच से काटने की कोशिश करोगे, ऐसे काटोगे कि दोनों बराबर बराबर आधे आधे कट जाएं, तो आप कहाँ से काटोगे? उसके मध्य से काटोगे, बीच से काटोगे? तो वैसी ही कुछ रेखा होती है। हमारी धरती को भी ऐसे ही इमेजिन किया जाता है कि अगर हम उसे बीच से काटेंगे तो कहाँ से काटेंगे, ऐसे काटना है कि दोनों आधे आधे बराबर बट जाएँ। तो जो बीच वाली रेखा जहाँ से आप उसको काटोगे उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो, चित्र 15.4 पेज नंबर 164, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेखा बीच में दिखाई गई है, उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो जो सूरज की रोशनी होती है वो भूमध्य रेखा वाले एरिया में ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए जो यहाँ के एरिया, जो यहाँ की जो जगहें होती हैं, देश होती हैं, वो ज़्यादा गर्म होती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो भूमध्य वाली रेखा वाले जो एरिया है वहाँ की जो हवा होती है वो भी गर्म होती है, वहाँ की ज़मीन भी ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ की हवा भी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी उस एरिया पर ज़्यादा पड़ रही होती है। तो क्या होता है, जब वहाँ की हवा गर्म हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो गर्म होने की वजह से उसकी जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम हो जाती है, और इसी वजह से वो ऊपर जाने लगता है। आपने धुआं देखा होगा, धुआं कभी नीचे को नहीं आता, धुआं ऊपर उठता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको समझना है धुआं ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि वो गर्म होता है इसीलिए वो ऊपर उठता है। इसीलिए यहाँ पर की जो हवा होती है, भूमध्य रेखा की जो एरिया के पास की हवा होती है वो भी ऊपर उठ जाती है। तो क्या होता है, वहाँ की जगह, स्पेस जो होती है वो खाली हो जाती है, तो उस स्पेस को, उस जगह को भरने के लिए जो ध्रुव वाले इलाके होते हैं वहाँ से हवा बह करके आ जाती है। तो अब ध्रुव वाले इलाके कौन से होते हैं, आप लोगों ने लट्टू चलते हुए देखा होगा, तो आप देखते हो ना जिस कील के ऊपर लट्टू चल रहा होता है वो उसकी ध्रुव कहलाती है। तो जिस स्पिन पर वो घूमता है लट्टू उसको ध्रुव कहते हैं। तो ऐसा ही एक इमेजिन किया गया है, एक स्पिन इमेजिन किया जाता है हमारी धरती के लिए भी जिसके अराउंड वो घूमती है। तो आप लोगों ने जो लट्टू में कील देखा है ना, वैसा ही कुछ इमेजिन किया जाता है, सोचा जाता है कि ऐसे ही कुछ कील टाइप होगी जिसके अराउंड जो होगी हमारी धरती वो घूमती है। तो जो टॉप और बॉटम वाले जो एरिया होते हैं, मतलब देखो जब आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा तो जहाँ पर से जिसके ऊपर वो लट्टू घूम रहा होता है उसको बॉटम कह लो, वो निचला एरिया हो गया, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक उसके पीछे जो ऊपर वाला एरिया हो गया, जिसके ऊपर जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो आपकी कील के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पर आप उसको टॉप समझ लो। तो ऐसी ही कील अब आप इमेजिन करो कि धरती में लगी होगी, तो जो उसके नीचे वाला एरिया होगा और उसके ऊपर वाला, उसके टॉप वाला एरिया जो होगा, तो टॉप और बॉटम वाले जो एरिया होते हैं उनको कहा जाता है ध्रुवीय इलाके। तो ध्रुवीय इलाके जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पहुँच पाती है सूरज की, इसीलिए वहाँ से जो हवा होती है वो बह करके गर्म इलाके वाली जगहों पर आती है। इसी के वजह से हम कहते हैं कि हवा चल रही है। तो हवा क्या करती है, हवा ठंडे इलाकों से बह करके गर्म इलाके वाले एरिया में पहुंचती है, उसी को हवा का चलना कहते हैं।
तो यहाँ पर आपको चित्र में भी दिखाया गया है, चित्र 15.4 पेज नंबर 164, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नीले रंग से दिखाया गया है वो आपको बता रहे हैं कि टॉप वाले एरिया से जो हवा होती है वो मध्य में पहुँच रही है और नीचे से भी हवा जो होती है वो मध्य में पहुँच रही है। तो जो बिल्कुल ऊपर वाला इलाका है और नीचे वाला इलाका है जो आपको ब्लू कलर की एरो से दिखाया गया है, वो एरो जो है वो वही बता रही है कि ऊपर वाला बिल्कुल टॉप वाला एरिया और बिल्कुल बॉटम वाला एरिया, बिल्कुल नीचे वाला एरिया, वहाँ से हवा जो है वो बीच में पहुँचती है, धरती के मध्य में पहुँचती है। और इसी को हम लोग कह देते हैं कि वायु जो हो रही है वो प्रवाहित हो रही है, इसी को वायु प्रवाह कह देते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों आपने ये पढ़ा कि हमारे धरती पर कैसे अलग अलग हिस्से जो होते हैं वहाँ पर असमान रूप से तापमान है, मतलब कुछ हमारे धरती का हिस्सा है वो गर्म ज़्यादा होता है, बाकी कुछ हिस्से जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसी तरीके से अब हमें पढ़ना है कि जो हमारी धरती है उस पर ज़मीन जो होती है, जहाँ पर पृथ्वी मौजूद है, वो ज़्यादा गर्म होता है और जो पानी वाला एरिया होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है। इस हिसाब से भी हमें अब पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, मतलब कि थल मतलब वो एरिया जहाँ पर लैंड मौजूद है, जहाँ पर ज़मीन होती है, और जल जो होता है उसका तापमान और धरती के तापमान में, जहाँ पर ज़मीन मौजूद है ज़मीन के तापमान में और जल के तापमान में जो अलग अलग अंतर होता है कि कभी ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है कभी पानी ज़्यादा गर्म होता है, तो हमें ये पढ़ना है यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, गर्मियों के समय में क्या होता है, जो ज़मीन वाला इलाका है जहाँ पर ज़मीन मौजूद है वहाँ पर गर्मियों के टाइम में क्या होता है, ज़मीन जो होती है वो बहुत आसानी से गर्म हो जाती है और बहुत आसानी से वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी होता है उसकी स्पेसिफ़िक हीट ज़्यादा होती है। स्पेसिफ़िक हीट के बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, तो आपको ये अभी ध्यान रखो, उसकी एक गुण है, पानी का एक गुण है कि जिसकी वजह से पानी जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही धूप पड़ती है तो उस धूप की गर्मी की वजह से तो ज़मीन वाला इलाका जो है वो गर्म हो जाता है, वो फटाफट से गर्म हो जाता है, लेकिन जो पानी वाला इलाका है उसको गर्म होने में काफ़ी समय लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन का इलाका तो पहले से गर्म हो गया, इसी की वजह से जो उसके ऊपर की हवा है, ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। और आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो ज़मीन वाले इलाके की गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है और उससे क्या होता है कि जो समुद्र के इलाके की हवा है वो ठंडी होती है, तो ठंडी हवा बह करके पहुंच जाती है कहाँ, ज़मीन वाले इलाके की हवा के नीचे, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन वाले इलाके की हवा गर्म होके ऊपर चली गई है तो वहाँ पे स्पेस खाली हो जाता है, तो क्या होता है उस स्पेस को भरने के लिए क्या करती है, जो समुद्र वाले इलाके की जो हवा होती है वो ठंडी होती है, वो बह करके पहुंच जाती है ज़मीन वाले इलाके में, और इसी को कहते हैं वायु का प्रवाहित होना। तो इस हवा के मूवमेंट को, एक जगह से जब हवा जो है पानी वाले इलाके से ज़मीन वाले इलाके में जो आ रही है, इस हवा के प्रवाह को मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं, ऐसी हवा जो मूव करती है चलती है उसी को हम पवन कहते हैं। तो वो हवा जिसमें गति है मूवमेंट है उसी को हम पवन कहते हैं, वो हवा जो रुकी हुई है उसे हम पवन नहीं कहेंगे, उसे हवा कह देंगे। लेकिन अगर हवा बहने लग गई चलने लग गई उसमें मूवमेंट है गति है तो ऐसी गति वाली हवा को हम पवन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो, चित्र 15.5 में आप देख सकते हो कि, और पेज नंबर 165 पर है ये चित्र, आप देख सकते हो कि किस तरीके से गर्मियों के टाइम में जो हवा होती है वो कैसे मूव करती है, वो दक्षिण पश्चिम वाले इलाके से मूव करती है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हवा जो है उसकी मूवमेंट होती है पानी वाले इलाके से ज़मीन वाले इलाके की तरफ। अब ये तो हमने गर्मियों के टाइम की बात की बच्चों, लेकिन ठंडियों के टाइम में जो हवा का मूवमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर आपने अभी क्या पढ़ा कि पानी वाले इलाके से ज़मीन वाले इलाके की तरफ हवा आ रही थी। ठंडियों में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि हिमालय वाले जो पहाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, तो जो हमारे भारत का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है यानी कि जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ की जो हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो वहाँ से क्या होती है हवा वो ट्रैवल करके अब पहुँचती है कहाँ पे, समुद्र में। समुद्र की हवा होती है गर्म, ठंडियों के टाइम में समुद्र की हवा गर्म हो जाती है,
मतलब बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें अगर हम ज़मीन वाले हवा से समुद्र वाले हवा की, तो जो ज़मीन वाली हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो समुद्र के ऊपर वाली हवा है वो तुलना करें तो थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए वो ऊपर को चली जाती है इस बार, और ज़मीन से हवा बह करके समुद्र की तरफ जाती है। तो ये हमको ठंड में देखने को मिलता है और गर्मियों में हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है। तो यही चीज़ आपको चित्र दिखाकर भी दिखाया गया है। आपको पेज नंबर 165 पर चित्र 15.6 आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि शीतकाल में, मतलब कि ठंडियों के टाइम में, जो ठंडियों का मौसम होता है उस दौरान हवा जो होती है उत्तर पश्चिमी दिशा वाली मानसून कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया मानसून में किस तरीके से हवाएँ कैसे दिशा अपनी बदलती हैं, कभी समुद्र से ज़मीन की तरफ, कभी ज़मीन से समुद्र की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों हमने सबसे पहले हवा के बारे में पढ़ लिया कि हवा कैसे कैसे चलती है, हवा के मूवमेंट को पवन कहते हैं, हवा जो है तापमान में परिवर्तन की वजह से उसमें उसके चलने में कैसे प्रभाव पड़ता है ये भी पढ़ लिया हमने, उसके वेग से किस तरीके से उसके दाब पे प्रभाव पड़ता है, और वायु का दाब क्या होता है और वो कैसे हमारे आसपास की चीज़ों को प्रभावित करता है, हमने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद अब अगला जो विषय है उसमें हमें पढ़ना है तड़ित झंझावात के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है जब आप वर्षा देखते हो, बारिश आपने सबने देखी होगी, और बारिश के टाइम पे आपने एक बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ सुनी होगी, तो आप लोगों को सोचना चाहिए उस वक्त कि जो ये बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ है ये कहाँ से हो रही है, ये क्यों हो रही है। तो आपको यहाँ पर अभी वही पढ़ना है कि जो बिजली के कड़कने की आप आवाज़ सुनते हो वो क्या होती है और कैसे बनती है। तो देखो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जब बारिश होती है उसके पहले काफ़ी तेज़ आंधी तूफान भी हो रहा होता है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। तो जब पवन बहुत तेज़ी से चलती है उस वक्त हल्की बहुत गर्माहट भी होती है, और जब वायु हवा जो होती है आपकी वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर जाने लगती है, और जो पानी की बूंदें हैं, जो भाप होता है वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट होकर नीचे आने लगता है। देखो क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाने लगती है, और आपको पता है कि सूरज की गर्मी की वजह से हवा गर्म हो चुकी है इसलिए वो ऊपर जा रही है, और सूरज की गर्मी की वजह से ही जो पानी होता है समुद्रों का, नदियों का, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो गर्म हो चुका है इसीलिए वो भी ऊपर को जाने लगता है, और जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो वहाँ पर बहुत ठंडा होता है तापमान, धरती के बहुत ऊंचाई में बादलों के पास में ठंडा होता है तापमान। तो क्या होता है कि भाप जो होती है पानी की जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो वहाँ पर ठंडे तापमान की वजह से वो फिर से ठंडी हो जाती है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती हैं, पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो बूंदें फिर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं, और इसी के वजह से आपको बारिश जो होती है उसकी बूंदें गिरती हुई नज़र आती हैं। अब यहाँ पर देखो, बारिश की बूंदें तो नीचे गिर रही हैं लेकिन जो हवा है वो गर्म हो गई है इसलिए वो ऊपर जा रही है। तो क्या होता है, ऊपर जाती हुई हवा और नीचे गिरती हुई बूंदें आपस में टकराती हैं, और इसी के वजह से आपको ये आवाज़ सुनाई देती है, जो बहुत तेज़ आपको बिजली कड़कने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है वो भी इस वजह से सुनाई देती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब पवन बहुत तेज़ी से चल रही होती है, हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है, तो हवा जो होती है वो आपस में रगड़ खाने की वजह से, हवा के ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, और आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आपस में रगड़ खाती है तो क्या होता है, वहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि देखा गया है कि जो पॉजिटिव वाले चार्ज होते हैं वो ऊपर की तरफ इकट्ठे होने लगते हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज के नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होने लगते हैं। ये तो अभी वैज्ञानिकों को पूरी तरीके से नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ऊपर इकट्ठा होता है, लेकिन ये देखा गया है कि ऊपर जो बादलों के ऊपर वाला इलाका है वहाँ पर में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है, और उसके नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है, और फिर से उसके भी नीचे ज़मीन के पास में भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब हवा तेज़ तेज़ चलने लगती है तो आपस में ही रगड़ खाने की वजह से इनमें चार्ज जो होती है वो पैदा हो जाती है, कुछ पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है, कुछ नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो जो ऊपर इकट्ठा होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, बीच में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाती है, और फिर से उसके नीचे में ज़मीन के पास में
फिर से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाती है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है चार्ज का सेपरेशन, चार्ज का अलग अलग होना। फिर क्या होता है, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो हवा होती है वो अब चार्ज का इतना ज़्यादा सेपरेशन हो गया है, चार्ज इतने ज़्यादा अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होने लगता है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में, एक दूसरे के पास में खींचने लगते हैं। इसकी वजह से आपको दिखाई देती है लाइटनिंग, आपको जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है वो तभी दिखाई देती है जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के पास में आ जाता है, चिपक जाता है, तो उसी वजह से आपको लाइटनिंग दिखाई देती है। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि कभी कभी जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है आपके घर में, तो आपको एक बिजली सी चमकती हुई नज़र आ जाती है और साथ में कुछ आवाज़ भी करती है वो, है ना। तो उसी तरीके से होता है हमारे बारिश के टाइम में, जो आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देता है, ठीक वैसा ही वहाँ पर भी होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर में आपको बिजली चमकती हुई नज़र आती है और उसी दौरान आपको तेज़ आवाज़ भी सुनाई देती है। तो पहला कारण तो आपको ये समझ में आ गया कि जब बूंदें नीचे आ रही होती है और पवन जो है ऊपर जा रही होती है, तो ये आपस में टकराते हैं तो ये भी आवाज करते हैं, और साथ में जब पवन बहुत तेजी से चलती है तो वहां चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनमें अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को आपस की तरफ खींचते हैं, एक दूसरे के पास खींचते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जुड़ जाते हैं तो आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और साथ में थोड़ी सी गर्जना, थोड़ी सी आवाज भी आपको सुनाई देती है। तो ये तो हो गया बच्चों तड़ित झंझावात के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तड़ित झंझावात होता किस तरीके से है, क्या इसके पीछे का कारण है। अब आपको बच्चों यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई गई है, तड़ित झंझावात दिखता किस तरीके से, आपने बिजली चमकते हुए देखा होगा कभी, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है, चित्र 15.7 पेज नंबर 165 पर आपको दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों अब हमें ये बात करनी है कि अगर कभी बिजली चमक रही हो, तड़ित झंझावात हो रहा हो, तो हमें उससे बचाव कैसे करना चाहिए, हमें खुद को उससे बचाना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बच्चों कि आपको कभी भी अगर तड़ित झंझावात हो रहा हो तो आपको खुले जगह पर नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा कहीं ना कहीं खुद को छिपा लेना चाहिए, किसी के घर में थोड़ी देर आश्रय ले लो, सहारा ले लो और किसी के घर में चले जाओ, या फिर कोशिश करो कि आप बारिश के टाइम पर अगर बिजली चमक रही है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि जो बिजली होती है वो पानी में बहुत आसानी से एक दूसरे में, वो पानी में पहुंच सकती है, मतलब कि जो पानी होता है वो बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जब तड़ित झंझावात हो रहा हो उस वक्त आप नहाना धोना ना करें, बर्तन धोना ना करें, कपड़े ना धोएं, और हो सके तो आप जल से दूर रहें, पानी से आप दूर रहें, ताकि आपको बिजली के आपके ऊपर गिरने का खतरा ना हो, आपको तड़ित झंझावात से कोई खतरा ना हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप किसी गाड़ी के अंदर में मौजूद हो, कहीं कार में मौजूद हो, चाहे बस में मौजूद हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस कार या बस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लेने चाहिए और उसके अंदर ही रहना चाहिए जब तक बारिश हो रही है या फिर बिजली कड़कती हुई आपको दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, आपको कार या बस से बाहर नहीं निकलना चाहिए उस दौरान। साथ ही में बच्चों देखो बारिश के टाइम में क्या होता है, जब बारिश से तो सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं और वुड वगैरह जो होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, इसीलिए अगर बारिश हो रही हो और साथ में बिजली कड़क रही हो या आवाज़ भी सुनाई दे रही हो, तो उस वक्त आपको पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, कोई भी वृक्ष हो उसके नीचे आपको नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर अलग थलग कोई वृक्ष है उस पर अगर बिजली गिर गई तो वृक्ष आपके ऊपर भी गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है, इसीलिए आपको अगर बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है तो उस दौरान आपको पेड़ के में खड़े नहीं होना चाहिए। साथ ही में बच्चों आपको खुली जमीन में भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी उस समय भीगे हुए होंगे बारिश के टाइम पर और हो सकता है कि आप ही के ऊपर बिजली जो है वो कड़क जाए, इसलिए आपको खुली जगह पर भी नहीं खड़े होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं आश्रय ले लेना चाहिए, किसी के घर में थोड़ी देर छुप जाना चाहिए ताकि आपको तड़ित झंझावात से कोई नुकसान ना पहुंच पाए। तो बच्चों यहाँ पर तो हमने बात कर ली तड़ित झंझावात की भी, और वायु के बारे में भी हमने बात कर ली, वायु के दाब की, वेग की और तापमान में बदलाव की वजह से वायु पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने बात कर ली। अब बाकी की जो बातें हैं वो मैं आपसे अगली क्लास में करूँगी, तब तक आपको क्या करना है, आपको जो भी कुछ मैंने आज पढ़ाया है आपको उसे रिवाइज कर लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है, और जो गतिविधियाँ हमने यहाँ पर पढ़ी हैं डिस्कस की हैं उनको आपको खुद से एक बार जरूर करके देखना है। उससे क्या होगा कि आपको आपके जो विषय मैंने पढ़ाए हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।